Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Mandakopanishad, presented by Swami Sri Akhandanandagiriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Om Tatsat. Tam Tattvam Na Janami. Kidrishosi Maheshwara, Yadrishosi Mahadeva, Tadrishaya Namona, Yo Vasau, Soaham Yajam. Om Tat Sat Brahmane Namah. Jagratadi Trihomuktam Jagratadi Mayam Tatha. Omkareksu Sambhedyam Yatpadam Tannamamyaham. Om Shanti. Mandukya Upanishad mein Atma ki swaroop ko samjhane ke liye हमारा अपना ही जो रोज का अनुभव है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इसी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा गया कि हम इस बात का विचार करें कि जागृत में, स्वप्न में और सुषुप्ति में क्या फर्क है, अंतर क्या? अंतर क्या है कि अभिप्राय है कि सत्य की दृष्टि से, सत्य को ग्रहण करने की दृष्टि से तीनों अवस्थाओं में क्या अंतर है? तो जब इस पर गौर करेंगे तो पता लगता है कि सत्य को ना तो जागृत में हम ग्रहण करते हैं, ना स्वप्न में ग्रहण करते हैं और ना सुषुप्ति। जागृत में विषयों का आकर्षण, स्वप्न में वासनाओं की प्रबलता और नींद में अज्ञान हमें तत्व से वंचित कर देता है, असलियत तक पहुंचने नहीं देता। और हमारा ये ख्याल है कि हम जागते हुए जो कुछ भी करते हैं ये बहुत ठीक है या अच्छा है या लाभदायक, वस्तुतः ये भी उतना ही अच्छा और उतना ही लाभदायक, उतना ही महत्वपूर्ण है जितना स्वप्न में आप कुछ कर लेते, क्योंकि स्वप्न में भी अन्यथा ग्रहण है, इसमें भी अन्यथा ग्रहण, अर्थात जो असलियत है वो नहीं। असलियत का मतलब यह है कि जो कुछ भी हम करते हैं या सोचते हैं वो रहने वाला नहीं, थोड़े दिनों का है लेकिन हमें लगता है कि जैसे ये कुछ स्थायी हो रहा है। वस्तुतः ये सब स्वप्न जैसा ही है और इसका पता ज्ञानवान को तो समय रहते ही इसके प्रति वो सचेत हो जाता है, अन्यथा संसार से जाते समय हर एक का ये अनुभव हो जाता है कि जो कुछ किया वो व्यर्थ ही है, इसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि ना तो साथ जाएगा ये जो कुछ जागते हुए हमने किया और ना ही साथ जाएगा जो स्वप्न में हमने देखा सुना। साथ जाने वाला तो अब भी साथ है, वो रहता ही साथ है, उसको ही आत्मा कहते हैं, उसको ही परमात्मा कहते हैं। जिसने कहीं जाना नहीं, जिसने हमेशा साथ देना है, उसका हम साथ नहीं देते, और जो रहने वाला नहीं है उसको हम अपना मानकर उसका साथ दे रहे हैं, उसी को अर्जित करने में लगे हुए, यही सारी परेशानी की जड़ है कि जो अपना नहीं है उसको अपना मान लिया और जो सचमुच में अपना है उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। यहां पर उस तत्व को, आत्मा को, तुरीय अवस्था को ऐसे कह के समझाया गया कि ना वो बाहर मुक्ता है उसमें, ना अंतर मुक्ता है, ना ज्ञान है, ना अज्ञान है। उसको देखा भी नहीं जा सकता, उसको पकड़ा भी नहीं जा सकता, उसकी बात भी नहीं की जा सकती, उसकी आवाज भी नहीं सुन सकते, उसको अपनी भी आवाज नहीं सुना सकते। प्रपंच के शांत हो जाने पर, मौन हो जाने पर उसकी अनुभूति होती है, बस वही वो तत्व है, ऐसा कह के इसमें वो समझाया गया। जिसको और किसी उपनिषद में सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म कहा गया, किसी में अयम आत्मा ब्रह्म कहा गया, किसी को सच्चिदानंद कहा गया, सत्व स्वरूप सद एव सौम्य अग्रम आसीत, केवल सत शब्द का ही प्रयोग किया गया। उसी ब्रह्म के लिए, उसी परम सत्ता के लिए तैत्तरीय उपनिषद में रस शब्द का प्रयोग किया गया कि रसो वही स, वो रस ही है। रस ही है का अर्थ केवल इतना ही है कि सब के सब हम असल में रस की ही तलाश में, हम जो कुछ भी करते हैं रस से उत्प्रेरित, हमें रस मिलता है तो हम कुछ करते, हमारा कुछ भी जितनी भी क्रियाएं हैं वो रस से उत्प्रेरित हैं, सत्य से उत्प्रेरित नहीं। कि हम सत्य की तलाश में घूम रहे हों ऐसा नहीं। तो सभी को जो कुछ भी हम करते हैं उसमें रस मिलता है, पढ़ाई में, परोपकार के कामों में, लोगों की सहायता करने में, जो कुछ भी हम करें रस उसका हमें ही मिलता है। अगर हम किसी का सम्मान भी करते हैं तो अंदर से हमें ही खुशी होती है, इसलिए उसका सम्मान भी करते हैं। तो हमारी जितनी भी क्रियाएं हैं वो सब की सब रस उत्प्रेरित हैं, रस की तलाश में हैं और रस में ही हो रही। फर्क केवल इतना ही है कि चाहते हम रस को हैं, लेकिन रस के स्वरूप को न समझकर हम इंद्रियों की तृप्ति को ही रस मान बैठते, उससे परेशानी होती है। काम तो हम शुरू करते हैं रस के लिए और लगता भी ऐसे है कि रस मिल रहा है, लेकिन उसके खत्म हो जाने के बाद फिर हम दुख में चले जाते हैं, लगता है कि वो रस नहीं था, फिर हम किसी और चीज में उसको ढूंढते हैं। तो किसी भी चीज को ढूंढते, फिर उसको छोड़ दिया, फिर और को छोड़ दिया, इसको भोग त्याग की वृत्ति कहते हैं। ना तो हमेशा के लिए हम त्याग कर सकते हैं, ना ही हमेशा के लिए भोग में रह सकते हैं। तो कभी भोग में, कभी त्याग में, इस तरह से हमारा जीवन नीचे ऊपर होता रहता है। वास्तविकता अगर समझ में आ जाए कि हम रस की तलाश में हैं, तो फिर हम रस को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि शास्त्र का ही कहना है कि रस आत्मा का धर्म है और किसी चीज में रस नहीं है। क्योंकि रसो वही सह, रस वो ही है, सह का मतलब वो, रस वो ही है, वो का मतलब आत्मा। जिसको आप व्यष्टि रूप आत्मा कहते हैं वही समष्टि में परमात्मा कहलाता है। कि रस वही है, वो रस रूप भी नहीं, रस ही वो है, अर्थात स्वाय उसके और कहीं रस नहीं, और जहां कहीं भी होगा रसाभास होगा, रस का आभास होगा, रस की झलक होगी, रस नहीं होगा। और वो जो रस का आभास है वो भी उस आत्मा के कारण, क्योंकि रस तो आत्मा ही है, वो अपने आप को किसी दूसरे उपकरण में रिफ्लेक्ट करती है, ऐसा आप इस बात को समझ लो। जैसे किसी शीशे में हमें अपनी शक्ल दिखलाई देती है, ऐसे ही जहां आत्मीयता नजर आए वहां रस आत्मा, जहां भी आत्मीयता को आत्मीयता से तो लगभग सब परिचित ही हैं, आत्मीयता और कहीं नहीं तो अपने बच्चे में, अपने पोतों में, किसी में तो लगती ही। तो वहां आत्मीयता में उस बच्चे को देखकर जो थोड़ा बहुत सुख मिलता है, रस मिलता है, वो असल में जैसे शीशे में आप अपनी शक्ल देख लेते हो, तो आत्मा जिसको हमने रस रूप कहा, वो आत्मा की झलक है, वो आपकी अपनी आत्मा है। क्योंकि आपके अंदर आत्मा न हो तो वो पोता या बेटा फिर किसी मतलब का नहीं है। तो अपनी ही आत्मा का आभास जहां मिलता है, जहां भी आत्मीयता होगी वहीं थोड़ा सा आनंद आएगा और कहीं नहीं आएगा। देखो, अगर कृष्ण, राम, शंकर, इनमें से भी जिससे आपकी आत्मीयता है, जिसके आप पुजारी हैं, उसी में रास आएगा, आपको दूसरे में नहीं आएगा, भले ही वो उसके कितने भी फॉलोअर हों। तो रस आत्मीयता में है, रसा आभास आत्मीयता में है, और रस आत्मा का नाम है। आत्मा को की व्याख्या करते हुए, या आत्मा को हिंदी में रस कह लेते हैं, ऐसा मान लो आप। तो तलाश उसी की है, बाकी और किसी चीज की नहीं। उसी के लिए बाधा क्या है? बाधा कल भी ये बात हुई कि साधना पक्ष, कि उसको जानने के लिए हम जितने भी साधन करते हैं रस के लिए, वस्तुतः उनमें से एक भी साधन ऐसा नहीं जो हम रस के लिए कर रहे हैं। रसा आभास के लिए हम करते हैं, करते रस के लिए हैं, लेकिन भटक जाते हैं और छोटी मोटी बातों में, तमाशे में ही उलझ के रह गए। जाना था कहीं और, लेकिन रास्ते में बस खेल तमाशा देखने लगे, वही रात हो गई और लौट आए। तो बात ये हुई कि जैसे अर्जुन का ये प्रश्न था कि हम क्यों सच्चाई से गिर जाते हैं, ना चाहते हुए भी बुराई में क्यों फंस जाते हैं, तो उसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने यह बात कही थी कि काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः। तो ये हमारा काम या रजोगुण की कल बात की थी कि ये, अब इसको आप ऐसा समझो, देखो जैसे आत्मा को अगर ढूंढना हो तो स्वपन, जागृत, सुषुप्ति का विवेक करते हुए तुरीय तत्व तक पहुंच जाते। वेदांत में श्रवण, मनन, निधिध्यासन और फिर साक्षात्कार तक पहुंच जाते। ऐसे ही सभी अंतम लक्ष्य का जब हम कोई नाम रख लेते हैं तो उस तक पहुंचने के फिर जो पड़ाव हैं उनके भी नाम अलग अलग रख लेते हैं कि वहां श्रवण, मनन, निधिध्यासन से पहुंचोगे और इस मार्ग से चलोगे तो स्वपन, सुषुप्ति, जागृत से पहुंचोगे। किसी और मार्ग का नाम लोगे, कर्म मार्ग का नाम लोगे तो उसमें निष्काम आप वही कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचित, वहां भी चार बातें आ जाएंगी। कर्म का ही कर्म को करो, फल की इच्छा न करो, कर्म को छोड़ो भी नहीं, ऐसा करते हुए उसमें भी वैसे ही कदम आ जाएंगे। ऐसे ही जब हम उसको रस मान लेते हैं कि वो रस है और रस की ही तलाश है, रस मेरे अपने ही अंदर है, तो उसको उस तक जो पहुंचने का रास्ता है रस के मार्ग से, उसकी भी चार ही कदम है। उनको कहते हैं रंजक, सुंदर, भव्य और दिव्य। रंजक का मतलब होता है पहले तो ये जीवन, ये संसार, हर चीज रंजक। रंजक का मतलब होता है नफरत ना हो, रंजन करने वाली, जो आपके मन को प्रसन्न करे। तो पहली स्थिति तो रंजन की है, पहली स्थिति अंग्रेजी में इसको प्रैटी बोलते हैं, प्रैटी। प्रैटी क्यूट, छोटे बच्चों को भी जो सुंदर सा बच्चा हो, नटखट सा हो, उसके लिए प्रैटी शब्द का प्रयोग करते हैं। नॉटी भी उसको कहते हैं, क्यूट भी उसको कह लेते हैं। उसी को हिंदी में रंजक कहते हैं। रंजक का मतलब है कि संसार की हर चीज, छोटी से छोटी चीज, इतनी से इतनी चीज रंजक है, कोई भी नफरत करने लायक नहीं। ये इसका अर्थ कि हर चीज रंजक है। रंजन की भी साधना है, रंजक कैसे लगेगी हर चीज उसकी भी साधना है, वो करना पड़ेगा। जिसको नहीं लगती, जिसको लग ही रही है हर चीज सुंदर, उसकी बात कोई बात नहीं। तो रंजक एक पहला कदम है। दूसरे कदम को कहते हैं सुंदर, ब्यूटीफुल। पहला प्रैटी, फिर एक कदम आगे बिठाए तो ब्यूटीफुल। प्रैटी और ब्यूटी में, रंजक और सौंदर्य में अंतर है दोनों की साधना में। जितना जितना आगे बढ़ेंगे, अब नफरत और कम होती चली गई, दुनिया में हर चीज से एकत्व स्थापित होता गया। और जब ब्यूटी से भी हम आगे उठते हैं तो उसको ग्रैंडियर बोल देते हैं, भव्यता। और भव्यता से भी जब आगे उठे तो दिव्यता। दिव्यता को सब्लिमिटी कहते हैं, सबलाइम कहते हैं, डिवाइन भी कह लेते हैं। वहां जाकर आप और रस, साधक और रस एक हो जाते हैं। वहां उन दोनों में कोई अंतर नहीं रहता। इस साधना में वैसे तो कोई भी साधना हो, नाम अलग अलग हैं, लेकिन क्रियाएं एक जैसी हैं। क्रियाओं का मतलब है जो हमें करना है वो एक जैसा ही। जो हमें रस तक नहीं पहुंचने देता, जो हमें रंजकता तक नहीं पहुंचने देता, वो क्या है? काम एष, क्रोध एष, रजोगुण समुद्भव। रंजकता में भी वही बाधक है और आत्म तत्व की अनुभूति में भी वही बाधक है। जिसको हमने आत्म तत्व कहा, तुरीय तत्व कहा, न अंतः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम कहा, उस तक भी वही नहीं पहुंचने देता और रस तक भी वही नहीं पहुंचने देता। मार्ग कोई भी हो, कर्म मार्ग हो, भक्ति मार्ग हो, ज्ञान मार्ग हो, तंत्र का मार्ग हो या सूफियाना, कोई भी मार्ग आपका दुनिया में हो, इतना हमेशा ध्यान रखना होगा कि उपलब्धि इन इंद्रियों के माध्यम से ही है। चाहे कितना भी कहो, लेकिन फिर भी इन कानों से हम सुनते क्या हैं, इन आंखों से हम देखते क्या हैं, हर उपलब्धि में यही आंख, यही कान, यही हाथ, यही जुबान, काम यही आने। कर्म मार्ग में भी यही है, ज्ञान मार्ग में भी यही है, उपासना में भी यही। ऐसा नहीं है कि इनके बिना कोई भी उपलब्धि हो जाए। अगर कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां ही नहीं तो जीव ब्रह्म की एकता भी काहे की रह गई? फिर तो ब्रह्म ही ब्रह्म है। ये दोनों बीच में से निकाल दो तो आप है ही नहीं, कोई भी उसका मतलब है ही नहीं। तो वो है ही नहीं में भी वेदांत वाले है शब्द को पकड़ लेते हैं कि नहीं के रूप में वो है, यानी कि फिर भी आप हो, आत्मा तो रहेगी, इंद्रियां रहे न रहे, एक दिन जैसे इंद्रियां ये वो सब नहीं रहेंगी, फिर भी हम रहेंगे। तो वो तो चलो परम स्थिति है, जो समझ ले उसको वो बाद की बात। लेकिन जिंदा रहते हुए अगर ज्ञान मार्ग से भी आप आगे जाना चाहते हैं, कर्म मार्ग से जाना चाहते हैं या किसी भी मार्ग से जाना चाहते हैं, साधन का प्रयोग इन इंद्रियों से ही करना होगा। इसलिए सबसे पहली शिक्षा इंद्रियों की शिक्षा ही है। अगर आप इंद्रियों को सुशिक्षित नहीं करते तो कहीं भी नहीं पहुंच सकते। ये सबसे पहली और आखिरी बात भी यही कह लो कि अगर साधना के क्षेत्र में सचमुच आगे किसी ने बढ़ना है तो ये सोच लेना कि आंखें बंद करके मैं रोज ध्यान करूंगा, या अपने आप को ऐसा समझ लो, या शंकर की फोटो ले लो, ये सब जितना मर्जी करो आप, लेकिन किसी जगह कोई पहुंचेगा नहीं, और पहुंचे भी नहीं है। बातें करने में सुनने में अच्छी लगेंगी कि आप आंखें बंद कर लो, अब अपने आप को सोचो कि मैं तैर रहा हूं, चलो आंखें बैठे हुए यहां तैरते हुए सोच रहे हैं। तो थोड़ी ये सारी कल्पनाएं हैं, इनमें सत्यता नाम की कोई वस्तु नहीं है। इसी को अगर अपने इस उपनिषद को याद रखो तो स्वप्न देखना शुरू कर दिया, क्योंकि जहां मन रह जाएगा इन बाकी इंद्रियां नहीं, मन ही मन से आप दरिया भी बने हुए हो, समुद्र भी बने हुए हो, तैर भी आप ही रहे हो, उछल भी आप ही रहे हो, तो ये स्वप्न, यही तो इन दिनों में देखा हमने। तो इसलिए ये स्वप्न को भी अन्यथा ग्रहण कहते हैं और असलियत नहीं, आंख खुलेगी नहीं रहना हो तो कितनी देर, या तो सारी उम्र आंख बंद करके तैरते रहो, चलो ठीक है कोई बात नहीं, हो गया काम कुछ ना कुछ, लेकिन कितनी देर तैर लोगे। तो ये कोई ध्यान की प्रक्रियाएं नहीं है। इस तरह के ध्यान जो आज के युग में बहुत पॉपुलर हुए और बहुत महत्वपूर्ण हुए, क्या फिर जोर जोर से उछलो, चीखे मारो, ऐसा करो वैसा करो, ये मनोराज्य, इसको स्वप्न कहा, ये अन्यथा ग्रहण, क्योंकि इसमें अंतः प्रज्ञा, ये अंतः प्रज्ञा तेजस का, जितना जितना भी आप इस स्वप्न के स्वरूप को समझोगे आपको पता लग जाएगा ये साधनाएं व्यर्थ की हैं, ये हमें सत्य तक नहीं ले जा सकती। तो पहला काम क्या हुआ, पहला काम आपका यही है कि इंद्रियों को सुशिक्षित करना। यहां पर गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इतनी बढ़िया बात कही, कल आपने एक श्लोक पढ़ा था कि आवृतम ज्ञानम एतेन, इसने ज्ञान को आवृत कर रखा है, ज्ञानी नो नित्य वैरिना, काम ने रजोगुण ने, ये ज्ञानियों का नित्य वैरी। उन्होंने आगे ये बात कही कि इंद्रियानि मनोबुद्धिर अस्य अधिष्ठानम उच्यते एतैर विमोहे तेषे ज्ञानम आवृत्य देहिना, इंद्रियानि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठानम उच्यते, ये जो काम है, जो रजोगुण है, जो असलियत से हमें हटाकर दूसरी ओर ले जाए, इसका अधिष्ठान क्या है, ये कहां रहता है, इसका निवास स्थान टिका हुआ किस पर है, इंद्रियानि मनोबुद्धि, इंद्रिया मन और बुद्धि, ये इस काम के या रजोगुण के, रजोगुण या काम एक ही बात है, गीता की अगर भाषा में हम कहेंगे तो इन दोनों में कोई अंतर वाली बात नहीं है, रजोगुण ही काम है, काम ही रजोगुण है, दोनों का स्वरूप एक जैसा है, दोनों के नुकसान एक जैसे हैं, अर्थात वो असलियत में रजोगुण केवल स्वप्न को कहते हैं, क्योंकि जब आप स्वप्न देख रहे होते हैं इस अंतः प्रज्ञा की व्याख्या में, तो उस समय सिर्फ रजोगुण ही काम कर रहा होता है, तमोगुण नींद में है, वहां आप ठहरे हुए हो, सो गए हुए हो, वहां इनर्शिया, वहां कुछ है नहीं, तो पूर्ण रूप में रजोगुण स्वप्न है। इसलिए काम कहो उसको, क्रोध कहो, जितनी बातें, इनका महत्व बस उस स्वप्न जैसा ही है, जैसे स्वप्न में नुकसान ही नुकसान है, अगर आदमी जाग जाए तो सीधे रास्ते पर चल जाएगा, नहीं तो सारी उम्र स्वप्न ही देखते रहे। तो इसके लिए उन्होंने ये कहा कि इसका अधिष्ठान क्या है, इंद्रियां मन और बुद्धि। इसका अर्थ केवल इतना ही है कि ये जो इन्फेक्शन है ये सबसे पहले इंद्रियों में आएगा, और फिर ये इन्फेक्शन अगर इंद्रियों पर इसका इलाज नहीं किया तो मन तक चला जाएगा, इंद्रियानी मनो बुद्धि, फिर तीसरे नंबर पर बुद्धि आएगी। ये वो इन्फेक्शन है कि इंद्रियों से शुरू हुआ, अगर इंद्रियों पर नहीं रोका गया तो ये मन तक पहुंचे, फिर मन भी उसके पीछे लग जाए, पहले तो आंख देखती है, अगर वही समझ में आ गई, क्या समझ में आ गई, भद्रम पश्येम अक्षिबिर यजत्रा, जो रोज कहते, अगर कहीं कोई किस्मत अच्छी हो, कोई संस्कार अच्छे हो, और अगर कभी ये भी ध्यान आ जाए कि मैंने पिछले 25 वर्ष से वेदांत सुना है, तो नजर जहां लगी हुई है जरा सा भी मन में विकार आने लगे तो ये ध्यान आ जाए कि मैंने हजार बार पढ़ा भद्रम पश्चिम अक्षिबिर है मेरी आंखों को भद्र को देखना और मैं करने क्या लगा। अगर आप संभल गए तो आपके गुरु भी धन्य और आप भी धन्य और जिन्होंने इतने प्रयत्न किए सत्संग को चलाने के भवन बनाने के उन संत के प्रति हमारा कर्जा उतर गया। और अगर वहां ये याद नहीं आया तो फिर अपने आप को अपने आप ही कह लेना जो मर्जी है, उसमें मेरे कहने की कोई बात नहीं। इंद्रियानी मन इंद्रियों से इन्फेक्शन शुरू हुआ। आंख अगर किसी से चिपक गई, किसी की ड्रेस से, किसी की उसके, किसी से उसके, तो मन तो फिर जाएगा ही। इंद्रियों को रोक लेना आसान है, लेकिन अगर वो इन्फेक्शन मन तक पहुंच गया तो फिर रात को भी सोने नहीं देगा। फिर उपाय ढूंढने शुरू करोगे कि जो बाधाएं आ रही हैं बीच में, मां बाधा है तो मां को अलग करो, बाप बाधा है तो बाप का कत्ल करो, अगर कोई मित्र बाधा है तो मित्र को हटाओ। मन फिर वहां तक पहुंच जाता है। तो इंद्रियानि मनोबुद्धि, बुद्धि का मतलब होता है फिर कोई चारा नहीं, फिर क्रैश। अगर क्योंकि बुद्धि फिर भी कहती रहती है कि ठीक नहीं, संभल जा, ठीक नहीं कर रहा तू। बुरे से बुरे में भी बुद्धि आपको वार्निंग देती है कि ये बात ठीक नहीं। लेकिन अगर बुद्धि ने भी मन के पीछे लग गई, क्योंकि मन में इन्फेक्शन जब बहुत फैल जाए, देखो छोटा सा इन्फेक्शन जब वो कैंसर ही बन गया पूरे शरीर में तो अब कोई इलाज नहीं, अब चाहे उसका ऑपरेशन करवाओ या कुछ भी कर, अब बचने वाला नहीं। तो बुद्धि में जाते ही वो फिर विकार पूरे रूपेण आप विकृत हो गए। इसलिए गीता जितना अच्छा ग्रंथ शायद ही दुनिया में आपको कोई मिले, इतने क्रम से उसी बात को, जिस बात को हम और शब्दों में, इन शब्दों में कहें, यहां उन्होंने आसान शब्दों से क्रम बना के भी बतला दिया कि देखो ये ऐसा है, क्योंकि इसके अधिष्ठान हैं। ये अधिष्ठान का मतलब इसकी पकड़, जैसे कोई घुसपैठिए नहीं होते, जैसे कोई आतंकवादी हैं, अगर उन्होंने बॉम्बे को भी कहीं कोई नुकसान पहुंचाना होगा ताजमहल में तो उनके दो चार यहां ठिकाने होते हैं जिसमें आके पहले बैठेंगे, उनमें बैठ के फिर वो बाकी का काम कर लेते। तो ऐसे ही ये जो पतन का काम है, जो हमें पतन की ओर ले जाती है रजोगुण या काम वासना जिसको आप कह लो, कामनाएं जो ले जाती हैं, ये शुरू कहां से होती हैं? इंद्रियों से। अगर इंद्रियों से शुरू होती हैं तो ये फिर बात ध्यान में रख लो कि भद्रम करणे भी श्रुणियाम देवा भद्रम पश्चिम अक्षुबिर यजत्राः।